الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى هم يه أحاديث كرين تي last time 376 حديث هم نے کر لی تھی کتاب المساجد میں سے, اور صبح کے وقت نماز پڑھنے کے اوپر بھی جو احادیث تھی وہ بھی ہم نے کی تھی. اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اذان اور اقامہ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اور دوسری یہ کہ عشاء کے بعد بات چیت کرنا زیادہ اور عشاء سے پہلے سونا اس کو ناپسند کیا گیا, یہ بھی ہماری ہو گئی تھی الحمدللہ. اچھا, اب ہم انشاءاللہ آگے سے شروع کرتے ہیں. جی, پہلا سوال رابعہ صدیقی, آپ بتائیں گے کہ منافق کے لیے کون سی نماز جو ہوتی ہے سب سے بھاری ہوتی ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. اسی سے, جزاک اللہ خیرن رابعہ, اسی سے ہم بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لیے جو نمازیں سب سے بھاری ہیں کہیں وہ فجر اور عشاء کی تو نہیں ہے, کہ فجر کے بعد نیند بہت ہوتی ہے اور عشاء کے بعد ظاہر ہے سارے دن کی تھکن ہوتی ہے, اور انسان کے لیے دل چاہتا ہے بس بستر پہ لیٹ جائے, اور خاص طور پہ گرمیوں میں اب جب کہ نماز لیٹ ہونے لگے گی تو اس وقت تو ویسے ہی جو ان کو جلدی سونے کی عادت ہوتی ہے یا سارا دن بھر کے کام سے بہت تھکے ہوتے ہیں تو عشاء کی نماز ان کو بہت بھاری لگنے لگتی. دوسری بات یہ کہ ہم نے چونکہ اتنے زیادہ اس کے اندر آج کل جو خود سے بعض نوافل کو بھی فرض کے برابر درجہ دے دیا, تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی دو نفل بھی پڑھو, آخر میں بھی دو نفل پڑھو, اور چار سنت شروع, اور حالانکہ چار سنت جو شروع کی ہیں وہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے کے اور یہ کہہ دیا گا کہ اس کے بغیر نہیں نماز ہونی, تو اس کی وجہ سے آج دیکھیں بچے بھی خاص طور پہ عشاء کی نماز سے بہت بھاگتے ہیں. حالانکہ جو فرائض ہیں اس کے ان کے اوپر ایمفسائز کریں, یہ نہ ہو کہ سنت اور نفل اور اتنی لمبا چوڑا ایک پیکج بنا دیں کہ عشاء کی نماز ہی مشکل ہو جائے. اور فجر کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے مشکل نہیں ہے, اس وقت اٹھنے کی وجہ سے مشکل ہے, کیونکہ جو لوگ لیٹ سونے کی عادی ہوتے ہیں ان کے لیے فجر کے لیے اٹھنا, اور اب جیسے اگین وہی میں کہوں گی کہ گرمیاں آ رہی ہیں تو اب یہ سب کا امتحان ہو جائے گا, فجر بہت ارلی ہونے لگے گی, اور جب بہت ارلی ہوتی ہے تو پھر بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ لیٹ سوئے ہیں جو 11-12 بجے سوئے ہیں ان کے لیے تو 4-5 بجے اٹھنا مشکل ہے. تو اس لیے اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے کیا حالات ہیں اور کس نماز کو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنی. اچھا, حدیث نمبر 384 کی طرف آئیں. ایک صحابی ہیں حضرت عتبان بن مالک انصاری, اور یہ دیکھیں لکھا ہوا کہ بدر میں بھی شریک ہوئے, تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی. اور اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. کیا وجہ ہے؟ ایک کو اجازت دے دی, ایک کو دی نہیں. فاطمہ عشرت فاطمہ آپ بتائیں گی.
السلام علیکم. کیونکہ وہ صحابی اندھے بھی تھے اور ان کو کوئی جانے والے نہیں تھے مسجد تک نا, اور
تو اندھے تو حضرت عبداللہ بن عبی بھی تھے,
کوئی مدد کرنے والے تھے جو مسجد تک لے جا سکتے تھے انہیں؟
دونوں ہی بلائنڈ تھے, دونوں ہی بلائنڈ تھے. عشرت,
اچھا
اچھا آپ آپ سنیے گا جواب. شکیلا آنٹی آپ بتائیں گی. جی جی آنٹی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, میں کسی اور سے پھر پوچھتی ہوں. نفیسہ شیخ آپ بتائیے. جی, ایک کو اجازت مل گئی, ایک کو نہیں ملی, یہ کیوں؟
کہ انہوں نے عبداللہ بن مکتوم سے پوچھا تو آپ نے کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے, تو انہوں نے کہا جی ہاں آتی ہے, تو آپ نے فرمایا
शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो थे उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था कि क्या आपके घर पे अजान की आवाज आती है, तो उन्होंने फरमाया हाँ, दूसरे जो है वो इतनी दूर रहती हैं, बरसात का मौसम आता है तो वादी भी बहने लगती है, उनके लिए नमाज के लिए आना मुश्किल है, लेकिन ये वाले जो है अजान की आवाज उनके घर पहुंचने तक का क्या मतलब है, इसका मतलब मस्जिद इतनी करीब है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई लाउड स्पीकर तो था नहीं, इसका मतलब इतनी क्लोज वो रहते थे कि अगर एक बंदा खड़ा होकर अजान दे तो उनके घर तक आवाज जाती थी, तो इसलिए उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, सॉरी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको आना होगा, और इनको इजाजत दी कि आप घर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके लिए ज्यादा मुश्किल था, थोड़ा फासला था, और आप खुद देखें एक अंधे आदमी के लिए कोई ऐसी वादी उबूर करना जो बरसात में जिसमें पानी भर जाए तो कितना मुश्किल है, इसलिए ये दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है, यानी कोई एक्सक्यूज नहीं है, इवन ब्लाइंड आदमी के लिए घर पे नमाज पढ़ना कोई एक्सक्यूज नहीं बनता, ये इससे समझ लें आप। अच्छा जी, अब शाज़िया नासिर आप बताएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वईद फरमाई उनके लिए कि जो घरों में अपने बैठे हैं जबकि मस्जिद में नमाज हो रही है। वालेकुम अस्सलाम,
ने फरमाया था कि मैं मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दिन अमामत किसी और को सौंप दूं और मैं लकड़ी लेकर उनके घरों में जाऊं, लकड़ियां लेकर इकट्ठी करूं सूखी लकड़ियां और उनको उनके घरों में उन समेत आग लगा दूं।
शाबाश, शाबाश शाज़िया, लेकिन इतनी डरा देने वाली ये बात है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, यानी मैं समझती हूँ कि हम सबको ये वाली जो अहादीस है ना, इनको अपने घर के मर्दों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, कि यानी जब तक कि कोई हकीकी वाकई ऐसा जेन्युइन एक्सक्यूज ना हो उस वक्त तक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मसलन जॉब पे हैं तो जाहिर है वहां से तो मस्जिद तक, अगर मस्जिद ही करीब नहीं है तो नहीं जा सकते, लेकिन जब घर पे हैं जैसे वीकेंड्स वगैरह हैं तो अगर वो कोशिश करें और जाएं, बाकी हमारा काम सिर्फ बता देना है, उसके अलावा हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये आप देख रहे हैं ना कि बगैर किसी उजर के बस ऐसे ही टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, नहीं बस थकावट है ये, तो हम कितने और काम भी तो करते हैं, ग्रोसरीज करते हैं, बाकी सब चीजें करते हैं, इसी में क्यों इतनी हमारी यानी कोताही है। अच्छा जी जी, वन हैज टू हियर अजान, वो उसको जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो आपको कभी अजान सुनेगी ही नहीं, यहाँ पे तो आप मस्जिद के बाहर भी खड़े हो जाएंगे तो आपको अजान नहीं सुनेगी, क्योंकि जाहिर है आप अजान बाहर तक आवाज लाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरी घर मस्जिद के साथ है लेकिन मुझे तो अजान सुनती ही नहीं है, तो ये एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं होगा लागू। लेकिन आज आप देखिए हमारे पास गाड़ियां हैं और गाड़ी पे 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इतने फासले, इतना टाइम लगता है सिर्फ मस्जिद तक पहुंचने के लिए, और अगर इतने उसके ऊपर भी ना हम जाएं तो फिर क्या है हमारे पास एक्सक्यूज, जबकि हम ग्रोसरी के लिए या मॉल के लिए तो ग्रोसरी भी तो हर आए दिन हमें कुछ ना कुछ जरूरत पड़ जाती है और लेके आते हैं, वरना हफ्ते में एक दफा तो हर एक ग्रोसरी करता ही है, लेकिन क्या बात है कि नमाजों के लिए हम ना जाए। ठीक है, अच्छा जी राफिया आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी थी इनके घर पे, तो इससे हम क्या दलील ले सकते हैं, अपने लिए हमारे लिए क्या दलील हो सकती है इनके घर में नमाज पढ़ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन सहाबी के घर में नमाज पढ़ी थी हमारे लिए क्या है इसके अंदर।
राफिया बेगम का आपने?
जी 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 राफिया आपको जी।
यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम भी कोई नेक लोगों से हम ये काम करवा सकते हैं जो नेक हो तो हम ये काम ले सकते हैं, मतलब हमारे घर में आए और मतलब ऐसा करवा सकते हैं।
शाबाश, यानी हम भी किसी को बुला के अपने घर में, अगर हमने मुसल्ला बनाना है एक जगह और हर घर में कोई मुसल्ले की जगह होनी चाहिए, मगर ये ना समझिएगा कि वो जो मुसल्ले की जगह हमने बना ली है तो वो मस्जिद बन गई, हम भी एक जगह को अपने घर में मुसल्ले की जगह बना सकते हैं और उसकी शुरुआत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट डे जैसे एक इनॉग्रेशन होती है, इफ्तिताह होता है ना किसी जगह का, तो उसके लिए हम फिर क्या कर सकते हैं कि हम वहां पे किसी को बुला के, अगर नहीं भी करते तो तब भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक एक हमें सुन्नत से एक चीज मिलती है कि हम किसी को बुला के ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप नमाज पढ़ें या पढ़ाएं तो वहां से फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं वहां पे नमाज पढ़ने का. लेकिन हर घर में अगर एक नमाज की जगह मखसूस हो तो ये बहुत ही अच्छी जगह, जिस जो मतलब जैसे हमारे घर में खाने का कमरा है, सोने का कमरा है, मेहमानों को बिठाने का कमरा है, तो क्यों ऐसा नहीं है कि नमाज का कोई कमरा हो. अगर कमरा नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, आप एक कोना, एक जगह, एक कमरे के अंदर ही एक जगह मखसूस कर लें जहां पे आपका जानमाज बिछा हो, जहां पे आपकी एक फिक्स जगह हो कि यहाँ पे नमाज पढ़ जाए. ऑफ कोर्स ये, लेकिन ये बात है कि वो फिर मस्जिद नहीं बन जाएगी. जैसे बाज लोग किसी जगह मुसल्ला बना लेते हैं, वहां पे जमा होकर नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको मस्जिद नहीं समझा जाएगा. मस्जिद स्टिल मस्जिद ही रहेगी, मुसल्ला मुसल्ला ही होता है. ठीक है, आपने हम यहाँ पे कई जगहों पे मुसल्ले बनाए हुए ना लोगों ने, लेकिन मुसल्ला मस्जिद की जगह नहीं ले सकता. सही है. अच्छा, जब कुछ लोगों ने एक आदमी के बारे में कहा कि वो तो मुनाफिक है ना, और कोई वजूहात थी कि भाई उसकी दोस्ती मुनाफिकी इनके साथ है या कुछ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज के बारे में क्या आपका रद्द अमल था? नरगिस नाहिद, आप बताएंगे.
जी,
शाबाश. यानी देखिए आप, ये अगर हम ये अहादीस कान खोल के, आंखें खोल के पढ़ लें, सुन लें, कितनी बड़ी बात है. आज हम मुनाफिक तो छोड़ें, हम तो स्ट्रेट बिल्कुल काफिर कह देते हैं, फलाना काफिर, फलां काफिर, वो काफिर, वो काफिर, यानी इतने कुफर के फतवे देते हैं ना, और वो तो दीन से निकल गया, और वो तो मुर्तद है, और फलाना ये है. हालांकि वो कलमा पढ़ने वाले लोग होते हैं, मगर किसी से कोई एक भी गलती हो जाए. रिसेंटली हमारे ही मुल्क में किसी ने कोई एक बात कुछ गलत मुंह से बोल दी तो उस आदमी के लिए उस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया, यानी उसको मुल्क से निकलना पड़ा कि ये तौहीन करने वाला और ये ऐसे और ये है. यानी हम इतनी जल्दी लोगों के लिए जजमेंटल हो जाते हैं, इतनी जल्दी लोगों को कुफर के फतवे देने लगते हैं, और इस ये हालांकि कोई कलमा पढ़ने वाला है, आपने उसका दिल चीर के नहीं देखा, आपने उसकी सिर्फ जुबान देखनी है. जब तक वो कलमा पढ़ रहा है वो मुसलमान है, लेकिन आज उस बंदे को मुंह दिखाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही कि कहीं पे भी वो जाए तो उसके लिए हमारे मुसलमानों में एक्सेप्टेबिलिटी यानी टॉलरेंस की कितनी कमी है कि कहीं एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, कहीं लोग उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं. यानी हम इससे देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात की गई तो आपने ये नहीं फरमाया कि हाँ वो होगा मुनाफिक, वो तो वो वाकई उसकी दोस्तियां उनके साथ हैं तो ऐसा तो मुनाफिक ही होगा और क्या. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी पॉजिटिव बात है, कितनी पॉजिटिव बात. इससे आप सीखें ये बात कि कलमा पढ़ने वाला जो वाकई आपके सामने कलमा पढ़ते, आप उसको नहीं कह सकते कि तुम काफिर हो या तुम तो नहीं, तुम्हारा कलमा तो तुमने दिल से पढ़ा ही नहीं है या ऐसे नहीं. ये हमारी कोई यानी अथॉरिटी नहीं है ये कहने की. और बिल्कुल रिलीजियस पीपल ही जाहिर है ऐसे कहेंगे, वो तो जो हम दीन के अंदर थोड़ा बहुत कुछ काम करने शुरू हो जाए या चार कलमे पढ़ लें दीन के, या कोई कोई कुरान के चार आयतें हमने अगर सीख लिया ना, तो अब हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हमारा ही राइट है कि हम फतवे दें, दूसरे लोग नहीं देते. वो देते ही वो लोग हैं जो अपने आप को रिलीजियस कहते हैं कि फलां काफिर है और फलां ये है और फलां इस्लाम का दुश्मन और फलां. देखिए हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, है ही नहीं, अल्लाह ने हमारे हवाले की नहीं है. तो हम अपने अमाल को देखें ना कि दूसरों पे कुफर के फतवे में. पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो दूसरे को काफिर कहता है या दूसरे के ऊपर लानत करता है उसका क्या है सजा. तो इसलिए ये मुनाफिक कह देना फौरन, काफिर कह देना फौरन, दीन से निकला हुआ कह देना फौरन, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब कह देना फौरन, ये सही बात नहीं है. अच्छा जी, अगला सवाल मेरा आप लोगों से ये है, कौन है और हम्मा गनी, आप बताएं कि क्या फर्ज के अलावा नफली नमाज की कोई इमामत या जमात कराई जा सकती है नफली नमाज की?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी उस्ताद, नफली नमाज की जमात करवा सकते हैं. अगर औरतें हैं तो वो अपना जो है जैसे सलातुत तस्बीह या कोई भी है ग्रुप करके उसको जो है अदा कर सकते हैं, हदीस से दलील मिलती है.
ठीक है, शाबाश. یعنی لیکن صلات تسبیح میں یہ ہے کہ اس کو ایک نارم نہ بنا لیں کہ ہمیشہ جماعت سے ہی کرائی جائے, بلکہ خود بھی پڑھنے کی, کیونکہ اس کے اندر جو تسبیحات ہیں وہ تو آپ نے خود پڑھنی ہے نا, وہ تسبیحات آپ جب تک خود نہیں پڑھیں گے, ایک بندہ اپنے منہ میں پڑھ رہا ہے تو وہ سب کے لیے, ہاں سکھانے کے لیے ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو سکھانے کے لیے جماعت کرا دیں دو چار دفعہ تاکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو انسان مسجد کی طرف جاتا ہے چل کے, اس کا کیا اجر ہے؟ ناظرین آپ بتائیں گے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ. اور بھی کچھ ہوتا ہے جی,
قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے اور جماعت سے پڑھنے کا جو 27 ٹائمز مور
صحیح. اچھا شاہ ہادی آپ بتائیے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جو چل کے جاتا ہے, انہوں نے ایک اس کا پارٹ بتایا, پورا کمپلیٹ بتائیں گے کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟
جی جی السلام علیکم.
جی بتائیے.
اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے.
یعنی دیکھیں سبحان اللہ, ایک ایک قدم پہ ایک درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو ضرورت ہے کہ اس کا ایک گناہ معاف ہو جائے اور ایک درجہ بلند ہو جائے. کوئی ہے؟ کوئی ہے نہیں ہے, اس لیے کہ اتنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یہاں پہ. ہاں دنیا میں مجھے کوئی کہے کہ یہ اس سے بڑا گھر تمہیں مل جائے گا, ایک تمہارا سٹیٹس دنیا میں اس سے اوپر ہو جائے گا, پروموشن آفس میں ہے تو پہلے مثلا ایک انجینئر ہے تو چیف انجینئر بن جاؤ گے تم, تو اس کے اوپر کتنے لوگ ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور کتنی سفارشیں اور کتنی چاپلوسیاں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایک قدم پہ درجہ بلند ہوگا اللہ کے ہاں, اس کی نظر میں درجے بلند ہو رہے ہیں, گناہ ایک معاف ہو رہا ہے. لیکن لگتا ہے ایسے جیسے اس کی کسی کو بھی ضرورت نہیں. اسی لیے ان حدیث کو انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے سب نے شیئر کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. صرف جانے پہ نہیں, اس پورے سفر پہ نہیں ایک درجہ بلند ہوگا, یہ یاد رکھیے, پورے سفر پہ نہیں, ایک قدم پہ. کتنے قدم ہیں آپ کے گھر سے مسجد تک؟ آپ سوچ لیں کتنے آپ کے ٹائر روٹیٹ کریں. آج تو قدم بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, گاڑی میں بیٹھنا ہے, گھر سے نکلنا ہے, گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی سے وہاں اتر گئے. ایک ایک جو ٹائر کی روٹیشن ہے اس کے اوپر آپ کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہے, ایک گناہ معاف ہو رہا ہے. جو فیول اس گاڑی کے اندر ڈالا اس کا بھی اجر مل رہا ہے آپ کو کہ یہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن کوئی شوق نہیں درجے بلند کرنے کا اور کوئی आ रही आवाज आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बताना चाह रही थी, देखें सुभान अल्लाह, जल्दी चला गया जो, जाहिर है नमाज के इंतजार के लिए क्या जरूरी है कि आप ऐसे ना जाएं कि अगर नमाज वहां पे कैलेंडर पे लिखा होता है ना 11:15 पे नमाज शुरू होगी यानी जमात, तो अब हम घर से ही 5 मिनट का सफर है तो घर से ही 11 बजे निकल रहा है जो बंदा, 5 मिनट की जगह इशारे पे उसको खड़े हुए 6 मिनट लग गए और वहां जब तक पहुंचे तो 1 रकत शुरू हो चुकी थी, तकबीर हो चुकी थी। अब जो बंदा इसमें शामिल होगा जमात तो उसको मिल गई, लेकिन इस अजर से महरूम रह गया कि जितनी देर, देखिए हमसे इतनी नमाजें तो पढ़ी ही नहीं जाती, सच्ची बात है, जितनी देर वो 5 मिनट पहले अगर पहुंच जाता ना, तो 5 मिनट जो वो वहां बैठा है उतनी देर वो ऐसे ही शुमार होता जैसे ये नमाज ही पढ़ता रहा, कितना उसको अजर मिल रहा है नमाज का, सुभान अल्लाह। और फिर नमाज के बाद आपने कभी, मुझे अगर इत्तेफाक होता है जुमे की नमाज में कभी कभार जाने का, तो इतनी सख्त हैरत होती है, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे कुछ हो, अल्लाह अकबर, शायद बहुत ही मजबूरी होती होगी लोगों को, लेकिन इधर इमाम साहब सलाम फेरते हैं, उधर ऐसे होता है कि जैसे अल्लाह माफ करे कि कोई इमरजेंसी हो गई कि लोग एकदम दौड़ते हैं दरवाजे की तरफ, अल्लाह आलम की क्या उनको इतना ही ज्यादा, उनका एक एक मिनट शायद कीमती होगा या वक्त पे पहुंचना होगा कहीं, लेकिन इतनी जबरदस्त दौड़ लगती है बहुत सारे लोगों की, इतना भी नहीं होता कि कोई सलाम फेरने के बाद, जैसे हमने यहाँ में पढ़ा हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज खत्म होने का पता कैसे चलता था कि ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर सब लोग कहते थे, तो उसकी भी कोई आवाज नहीं आती, यानी इधर सलाम फेरा जाता और उधर सबकी दौड़ लग जाती। यहाँ पे क्या कहा गया, जितनी देर बैठे रहोगे सुभान अल्लाह, हम लोगों को कहते हैं हमारे लिए दुआएं करो और इधर अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि इसके लिए दुआएं करते रहो, अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इस पे रहम कर दे, सुभान अल्लाह। जब तक उसका वजू रहेगा और वो उस जगह बैठा रहेगा तो उसके लिए दुआएं होती रहेंगी, लेकिन इस याद रहे कि उसी जगह बैठा रहे, अनलेस के हमें खुदा ना खास्ता कमर की कोई तकलीफ है, टेक लगानी है तो हम लोग उठ के इधर उधर हो जाते हैं, ऐसी कोई तकलीफ है तो, अदरवाइज कोशिश करें उसी जगह पे जम के बैठे रहें, वहां से नहीं उठे, ठीक है, और वहां पे दुआएं करें, जिक्र करें और ये इमेजिन करें कि फरिश्ते मेरे पास खड़े हुए मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। ये बच्चों से जरूर शेयर करिएगा, इसको हाईलाइट कर लें इस हदीस को, क्योंकि इसमें सारी फजीलतें एक साथ इकट्ठी जमा हो गई, ठीक है। अब और ज्यादा दूर से जो आने वाला होगा उसको अब हम ठीक है, हमारी नियत होती है कि मस्जिद के करीब घर लें ताकि आसानी हो जाए, मैं खुद भी इसको समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का घर दूर भी है तो क्या हो गया, अब उसके लिए भी कुछ है अच्छी बात उसके बाद भी, तो आप बताएंगे जो दूर है तो वो क्या उसी फायदे में है वो? जी नसरी, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन नसरीन, बिल्कुल हर कदम पे जिसको ये होगा कि मैं जितनी दूर से आ रहा हूँ उतना ही मुझे ज्यादा अजर मिलेगा, अल्लाह ताला किसी का भी अजर रखता नहीं है, तुम भी इस चीज पे गम ना करो कि हाँ हमारा घर तो मस्जिद से है, हमें तो 15 मिनट पे जाना पड़ता है 10 मिनट पे, तो तुम्हारा अजर भी तो ज्यादा है, ये भी तो देखो, वो जो करीब बिल्कुल अच्छा, मुझे हमेशा रश बहुत आता है जिनके घर मस्जिद से बिल्कुल करीब होते हैं, साथ में है कि सिर्फ इस लालच में कि किसी को जाते वक्त सुस्ती नहीं होगी, लेकिन ये देखें कि सुभान अल्लाह जो अजर को अहम समझते हैं ना, वो ये देखें कि दूर वाले तुम भी ना रो, तुम भी ना मायूस हो, तुम्हें भी अल्लाह ताला ज्यादा अजर देगा हर कदम के बदले पे, हर कदम के बदले पे डॉलर मिलना हो तो हम और दूर जाके, बास कंपनीज में ऐसा होता है, जी इंशाल्लाह मैं अभी छोड़ दी माइक, बास कंपनी में ऐसा होता है कि वो माइलेज देते हैं और हर माइल के पैसे वो देते हैं कि अगर आप दूर से आ रहे हैं, आपका घर दूर है तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए आपको हर माइल के पैसे मिलेंगे, तो जो लोग बहुत दूर रहते हैं ना वो बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमें तो माइलेज मिलती है तो उनके पैसे ज्यादा बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द वीक, तो वो खुशी खुशी, हालांकि उनको टाइम ज्यादा लगता है, पेट्रोल के मनी और मेंटेनेंस वगैरह के मनी मिलते हैं वो उससे ज्यादा होते हैं जितना पेट्रोल पड़ता है गाड़ी में, तो वो इस पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह देखिए मस्जिद जाने के लिए हमें होता है कि हम चूंकि हमारा घर करीब है ही नहीं तो फिर क्या, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें अजर समेटने वालों में बनाए और अल्लाह इसका शौक हमें लगा दे। अच्छा अब हम यहाँ तक अभी नहीं पहुंच पाए कुनूत तक, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रिव्यू सेशन में इंशाल्लाह हम ये कुनूत और कुनूत नाजला और इसके बारे में यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से इस सबक को करके आइएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर का हमारा टेस्ट कब हो, ठीक है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।